नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः लेक्चर नंबर 9 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोए सौवसाहूणं सिद्धं शुद्धं पणमिय जिनेन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयम् आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित ये जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड भाषा टीका है उसका यहाँ हिंदी अनुवाद की हम यहाँ स्वाध्याय उसका चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 57। अभी जो हमने मंगलाचरण गाया है उसी के अलग अलग अर्थ देख रहे हैं हम। तो जब हम मंगलाचरण अभी गाते हैं पहले तो केवल मंगलाचरण रूप से हम कहते थे, अब वो कहते कहते उसका अर्थ ख्याल में आ रहा है ना, क्योंकि हमने कितने हर एक शब्द के कितने ही अर्थ देखे हैं। अब यहाँ 57 पृष्ठ पर अथवा अन्य अर्थ कहते हैं बीच वाला।
ये कल हमने पूछा था कितने अर्थ किए हैं, तो 9 अर्थ किए और भावार्थ में 10वां अर्थ किया है। अभी 7वां पढ़ने जा रहे हैं हम।
अथवा अन्य अर्थ कहते हैं प्रणम्य यानी नमस्कार करके, प्रणमीय है ना, हमने तो गाथा जो पढ़ी थी प्राकृत में पढ़ी थी और यहाँ संस्कृत शब्दों के अर्थ बता रहे। कम किसे नमस्कार करके, कम अर्थात आत्मद्रव्य उसे नमस्कार करके जीव का प्ररूपण करता हूँ कैसा है। अकलम अकलंकम में कम का अर्थ हो लिया आत्मद्रव्य। पहले हमने अकलंक यानी कलंक बिना का दोष रहित ऐसा अर्थ देखा था, अभी यहाँ अकेले कम का अर्थ आत्मद्रव्य लिया और वो कैसा है तो अकलम अर्थात नहीं विद्यमान है, कल अर्थात शरीर जिसके ऐसा है कैसे कैसे अर्थ निकाले। अकल हम कहते निकल अब कहते हैं ऐसे, अकल आत्मद्रव्य को शरीर ही नहीं है ऐसा जो आत्मद्रव्य उसको नमस्कार करके जीव का प्ररूपण करता हूँ। पुनश्च कैसा है सिद्धम अर्थात नित्य अनादि निधन है आत्मद्रव्य कैसा है उसकी बात चल रही है। पुनश्च कैसा है शुद्धम अर्थात शुद्ध निश्चय ने के गोचर है, गोचर यानी उसके द्वारा जाना जाए ऐसे है। पुनश्च कैसा है जिनेन्द्र वर नेमी चंद्रम जिन जो असंयत सम्यक दृष्टि आदि, ये सम्यक चौथे गुण स्थान से उनको जिन कहा, आदि में आगे वाले सब ले लेना, उनका इंद्र अर्थात स्वामी है परम आराधने योग्य है। किसकी बात चल रही है आत्मद्रव्य की। आत्मद्रव्य कैसा है तो जिन जो है उनका स्वामी है यानी ये चौथे गुण स्थान से लेकर आगे के सभी जीव शुद्धात्म द्रव्य की आराधना करने वाले हैं, ये बात बताना चाहते हैं। पुनश्च वर अर्थात समस्त पदार्थों में सारभूत है आत्म, जैसे हम समय सार कहते हैं वैसे यहाँ जो आत्म द्रव्य है समस्त पदार्थों में सार रूप है। पुनश्च नेमिचंद्र अर्थात ज्ञान सुख स्वभाव को धरता है, पहले हमने नेमिचंद्र का अर्थ तीर्थंकर किया था, अलग अलग अर्थ देखे ना हमने, वर का अर्थ हमने 24 तीर्थंकर भी देखा था, अब यहाँ आत्मद्रव्य को ही नेमिचंद्र कहा है। सो जिनेन्द्र वही वर वही नेमिचंद्र ऐसा जिनेन्द्र वर नेमिचंद्र आत्मा है। पुनश्च कैसा है गुण रत्न भूषणोदयम, गुणानाम अर्थात समस्त गुणों में रत्न अर्थात रत्नवत पूज्य प्रधान ऐसा जो सम्यक्त्व गुण उसका है उदय अर्थात उत्पत्ति, जिसके उदय होना है ना उसकी उत्पत्ति होना, उत्पाद होना। अथवा चूंकि आत्मानुभव से सम्यक्त होता है इसलिए आत्मा गुणरत्न भूषणोदय है, आत्मा को ही गुणरत्न भूषणोदय कहा। अथवा अन्य अर्थ कहते हैं, ये कितने नंबर
देखो,
का
ये अभी आत्मा चलेगा। हाँ। देखो एक बात यहाँ है कि यहाँ आत्मा के ऊपर सब विशेषण घटित किए हैं, सभी को मतलब जो कुछ विशेषण हमने देखे थे लाइक सिद्धम शुद्धम कम अकलम, ये सारी बातें आत्मा पर घटित किए। आप घर में जाके आराम से पढ़ लेना यानी हम तो इतना ही मैंने कहा था कि कैसी बुद्धिशाली जीव मतलब की परिणति होगी कि उन्होंने इतने सारे अर्थ निकाले, यानी प्रगल्भता क्या होगी। बापा कहते हैं कि स्वयं की महिमा है इसमें, बहुत अच्छा। आगे
अब यहाँ पढ़ते हम, अथवा अन्य अर्थ कहते हैं, प्रणम्य ने नमस्कार करके, कम किसे, सिद्धम अर्थात सिद्ध परमेष्टियों के समूह को, सो कैसा है तो शुद्धम अर्थात दग्ध किए है आठ कर्म मूल जिन्होंने, पुनश्च किसे, जिनेन्द्र वर नेमी चंद्रम, जिनेन्द्र अर्थात अर्हत परमेष्ठियों का समूह, सो वराह अर्थात उत्कृष्ट जीव, गणधर चक्रवर्ती इंद्र धरणेन्द्रादिक भव्य प्रधान, वे ही हुए नेमी अर्थात नक्षत्र, उनमें चंद्र अर्थात चंद्रमावत प्रधान। क्या कहते हैं, जिनेन्द्र वर नेमी चंद्र, तो चंद्रमा ये सभी तारों में चंद्रमा प्रधान है, वैसे ही यहाँ उत्कृष्ट जीव कौन कौन लिए, गणधर है चक्रवर्ती है इंद्र है धरणेन्द्र है आदि, और वे हुए नक्षत्र और उनमें प्रधान ऐसा है चंद्र, ऐसे जिनेन्द्र वही वर नेमी चंद्र उस अरहत परमेश्वरों के समूह को, पहले सिद्धम के अर्थ किया सिद्ध परमेश्वरों के समूह को, और अभी यहाँ जिनेन्द्र वर नेमी चंद्रम में अर्हत परमेष्ठियों के समूह को, सो कैसा है, अकलंकम अर्थात दूर किया है तिरसठ कर्म प्रकृति रूप मल कलंक जिसने, ऐसा है हमने देखा तिरसठ प्रकृतियों का नाश करके अरहंत हुए, तो कोई कहेगा कोई कौन से तिरसठ है, हा? देवशास्त्र गुरु की पूजा में क्या पढ़ा, हाँ चौ कर्म किस त्रेसठ प्रकृति नाशी, जरा त्रेसठ गिनाओ तो हम पूरे एक एक प्रकृति का नाम नहीं लिखेंगे। घाती कर्म किते घाती टोटल 47, हाँ और हाँ 13 नाम की कितनी हुई,
60
साठ हुई,
47 + 13,
हाँ और हमको कितनी चाहिए,
63
और कौन सी तीन, हाँ नहीं बोलो अश्विन भाई, उनकी मनुष्य आयु चल रही है, सत्ता में मनुष्य आयु है और जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाला है वो और कोई आयु बांधता नहीं है, यानी उसके सत्ता में वो आयु है ही नहीं है, तो हम उसका नाश किया ऐसा कहेंगे। तो 63 प्रकृति कौन कौन सी हुई, चार घाती कर्मों की मिलकर होती है 47, तीन आयु जो बांधी नहीं थी तो कितनी हो गई, 50 और नाम कर्म की 13। अभी उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं हुई, तो एक इंद्रिय जाति आदि होती है, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानपुरी ये सारे नरक गति, ये प्रकृतियों का 90 गुणस्थान में ही घात हो जाता है, तो ऐसे 63 प्रकृतियों का नाश करके अरिहंत पद प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ कहते हैं हाँ तीन आयु बांधी नहीं थी, क्योंकि जो चरम शरीर है उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं, उसकी सत्ता में कितनी आयु है, भुज्जमान तो होगी ना, हाँ भुज्जमान आयु तो है अभी, परंतु अन्य तीन नहीं है, इसलिए तीन आयु बांधी ही नहीं है। जिसने आयु का बंधक किया है वो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं।
नलिन भाई, तीन कौन सी है?
तीन आयु कौन सी पूछ रहे हैं आपको? हाँ,
बहुत अच्छा। हमारे अश्विन भाई चुप नहीं बैठते।
देखो बताए ना, पूरी 63 बताई, 47 घाती कर्म। नहीं नहीं नहीं, अरिहंत पद प्राप्त करता है तो 63 प्रकृति नहीं रही उनके।
देखो यहाँ पर
क्योंकि
पहले जो पृष्ठ है 58, उसके तीसरे लाइन में ऐसा लिखा है, अरहत परमेश्वरों के समूह को। तो वो परमेश्वर कैसे हैं जो अरहंत अवस्था के? अकलंकम, यानी जिन्होंने कलंक दूर किया है। कौन से कलंक है? तो कहते 63 कर्म प्रकृति का मल रूपी जो कलंक है, वो 63 कौन सी है उसका अभी विवेचन चल रहा है। ये 9वें 8वें 10वें गुणस्थान वालों की बात नहीं है, यह तो अरहंत अवस्था यानी 13वें गुणस्थान वर्ती जीवों की यहाँ बात है, और वो भी तद्भव मोक्षगामी वाला चाहिए हो, क्योंकि 13वें में आया वो तो उसी भाव में जाने वाला है।
देखो, जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है उसकी सत्ता में से कितने कर्म नहीं है? अभी जो हमने देखे थे, तीन आयु नहीं है, और वो दर्शन मोहनी की उसने क्षपणा की है, उसका अर्थ है अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहनी की 3 नहीं है, यानी 10 प्रकृति का उसने वहीं पर, वो है ही नहीं, उसी ने क्षय कहेंगे हम। 3 बांधी नहीं और 7 का क्षय किया है, ऐसा जीव क्षपक श्रेणी पर चढ़ेगा। बात सही है? अब क्षपक श्रेणी में वो फिर वो क्रम से जो नाम कर्म की 13 चली जाएंगी, यानी उसका क्षय हो जाएगा, फिर 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनी चला जाएगा, वो भी क्रम क्रम से जाएंगे ना, 9वें गुणस्थान में 8 कषाय जाएंगे, फिर बाद में वेद जाएंगे, 6-9 कषाय चले जाएंगे इस तरह से। और 12वें के अंत में क्या होगा? बचे हुए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय भी चले जाएंगे 12वें के अंत समय में, तब कहेंगे कि 13वां गुणस्थान प्राप्त हुआ। इसलिए वहां पहले के भी गिनकर 63 कर्म प्रकृतियों का नाश करके अरिहंत हुए ऐसा कहेंगे, वो तो सामान्य कथन है, परंतु वो नाश है वो वेरियस अलग अलग स्टेजेस पर हुआ है। परंतु जिन्होंने अरहंत पद प्राप्त किया तब वो 63 में से जो बचे थे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, उनका वहां नाश हो गया और अरहंत पद प्राप्त हुआ। बात ख्याल में आई? अब ये कहां क्या होता है वो सारे कर्म कांड का विषय है।
अभी अपना जीव कांड चल रहा
है। अभी जीव कांड की बात हम आगे बढ़ाएंगे। केवल उन्हीं को नमस्कार करके नहीं, अपितु पहले सिद्धम कहकर सिद्धों को नमस्कार किया, सिद्ध समूह को, और जिनेन्द्र वर्णेमी चंद्रम कहकर अरिहंतों के समूह को नमस्कार किया। मात्र उन्हीं को किया क्या? तो आगे कहते हैं, अपितु यानी गुणरत्न भूषणोदयम, गुण रूपी रतन कौन से? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वे ही हुए भूषण अर्थात आभरण, उनका है उदय अर्थात समुदाय जिसके, ऐसा आचार्य उपाध्याय साधु समूह। पहले सिद्धों का समूह, फिर अर्हतों का समूह, अब आचार्य उपाध्याय और साधुओं का समूह, गुणरत्न भूषण उदयम। इस तरह सिद्ध अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु रूप पंच परमेष्टियों को नमस्कार करके जीव का प्ररूपण करता हूं। अब अथवा अन्य अर्थ कहते हैं, आगे भी कह रहे हैं। अभी अब प्रणम्य अर्थात नमस्कार करके कम किसे जीवस्य प्ररूपणम, अर्थात जीवों का निरूपण वा ग्रंथ उसे नमस्कार करके कहता हूं, यानी वो प्ररूपण नमस्कार, प्ररूपण को नमस्कार करता हूं, यानी शास्त्र को नमस्कार करता हूं। सो कैसा है सिद्धम अर्थात सम्यक गुरुओं के उपदेश पूर्वक पने से अखंड प्रवाह रूप से अनादि से चला आया है। क्या कहते हैं? तो अनादि से तीर्थंकर होते आए हैं और अनादि से ही शास्त्रों की रचना होती आई है और अनादि से गुरुओं की परंपरा से ये बात आगे आगे चल रही है, तो हमें भी वो प्राप्त हुई है, तो ये जो प्ररूपण है, तो क्या महावीर भगवान ने बताया हुआ प्ररूपण थोड़ा अलग होगा और आदिनाथ ने बताया हुआ थोड़ा अलग होगा ना? अरे काल का डिफरेंस हुआ ना इतना, हाँ तीनों काल यही रहेगा क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही कथन होगा सर्वत्र, इसलिए कहते हैं।
एक एक मिनट।
हाँ,
हम बहुत साल पहले पूना गए थे, वहाँ पर एक भाई साहब हमें मिले, आप इतना गला फाड़ फाड़ कर लोगों को कहते कंदमूल मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। मैं ऐसा करूँगा, मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, मैं यहाँ के लोगों को हिप्नोटिज्म करके वो दारू पीना आदि सब छोड़ देंगे, आप कहो तो मैं करता हूँ। तो मैंने कहा साहब जादे, हम तो उन्हीं की बात बता रहे हैं जो सर्वज्ञ थे, जो बात सर्वज्ञ को पता नहीं है वो आपको पता है, लेकिन हमारा उस पर भरोसा नहीं। वो कहता मैं हिप्नोटाइज करूंगा तो आदू प्याज आदि खाना छोड़ देंगे। मेरे कितने टाइम तक? जब तुम्हारा हिप्नोटिज्म खत्म होगा तो चालू करेंगे डबल फोर्स से। लेकिन जो बात केवल ही नहीं जानते थे वो आप जानते हो, विचार करो, फिर बाद में मिलना मुझे। चलो।
अथवा अन्य अर्थ कहते हैं, हमने देखा ना जीवस्य प्ररूपण, मैंने ग्रंथ को ही नमस्कार करके, सो कैसा है तो कह दिया सिद्धम, यानी ये जो उपदेश है वो अखंड पने से अनादि से चला आ रहा है। पुनश्च कैसा है शुद्धम, ये जो शास्त्र है ये उपदेश जो है वो कैसा है तो शुद्ध है, अर्थात प्रमाण से अविरोधी अर्थ के प्रतिपादन पने से ये जो इसमें कथन होता है वो प्रमाण है और उससे अविरोधी अर्थ का प्रतिपादन होता है, यानी जो कोई प्रतिपादन यानी कथन है वो कहीं भी प्रमाण से विरुद्ध नहीं होता। भगवान ने बताई हुई प्रमाण बात है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 100% सत्य बात है, तो उससे कोई कहीं विरोध नहीं है।
विरोधी यानी कॉन्ट्रडिक्टरी और अविरोधी यानी जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ऐसा।
तो ये विरोध कैसे कैसे हो सकता है? तो पूर्वापर विरोध, जैसे अन्य मतियों के शास्त्र में होता है, प्रत्यक्ष से विरोध, यानी प्रत्यक्ष कुछ चीजें अलग ही दिखे और यहाँ कथन कुछ अलग हो, ऐसा भी विरोध नहीं है। अनुमान से, हम अनुमान से कोई अलग बात, अनुमान तर्क वगैरह लगाए, अनुमान से कुछ अलग बात भाषित हो और वस्तु स्वरूप कुछ अलग हो, ये भी बात नहीं हो, यानी वैसा भी विरोध नहीं है। आगम से, यानी आगम में कुछ कथन अलग हो या गुरुओं की परंपरा से कुछ अलग, ऐसा भी नहीं है। लोक से भी कोई विरोध नहीं है और निज वचन आदि से विरोध इनसे अखंडित है। पुनश्च कैसा है जिनेन्द्र वर नेमि चंद्रम, जिनेन्द्र अर्थात सर्वज्ञ, सो है वर अर्थात कर्ता जिसका, क्योंकि ये जो शास्त्र है जिनवाणी जो है उसके मूल कर्ता सर्वज्ञ भगवान है। ऐसा जिनेन्द्र वर अर्थात सर्वज्ञ प्रणीत है, प्रणीत यानी उन्होंने बताया हुआ। ये प्रणीत शब्द कहीं सुना है? पन्नत्तो बोलो। हाँ, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, प्रणीत केवली प्रणीत, धर्म ही मंगल है, उत्तम है, शरण है, तो ये सर्वज्ञ प्रणीत है।
ये प्रणीत शब्द संस्कृत है।
हाँ, संस्कृत।
और पन्नत्तो शब्द प्राकृत है। तो वो तो तीन बार तो हम बोलते ही हैं, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पौवज्जामि, और मंगल की बात बताई और उत्तम की भी बात आती है।
तो ये सर्वज्ञ प्रणीत है, ये बताने का प्रयोजन क्या है? कहते इस विशेषण द्वारा। कौन सा विशेषण? ग्रंथ का विशेषण क्या है कि ये सर्वज्ञ ने बताया हुआ है। तो इस विशेषण द्वारा वक्ता के प्रमाणपना से वचन का प्रमाणपना दिखाया है। कोई भी कथन है तो कोई बहुत झूठ बोलने वाला कोई सच भी बोल जाए तो हम क्या कहते ये किसने बताया, ये अमुक एक व्यक्ति ने बताया, अरे उस पर विश्वास नहीं करना, ऐसा होता है ना। परंतु यहाँ बताने वाले कौन है? वीतरागी और सर्वज्ञ। तो झूठ कोई क्यों कहता है? बोलो तेजल। कोई व्यक्ति झूठ क्यों कहता है? कोई बात झूठ क्यों कहता है?
झूठ क्यों बोलता है?
क्यों बोलता है झूठ?
नहीं मालूम, झूठ बोलती हूँ।
मैं आपसे पूछूं कि ये तो ग्रंथ में कितने पेजेस है, आप क्या कहेंगे? या मार्गणाओं के नाम बताओ, मैं पूछूं आपको। अज्ञान से मालूम नहीं, इसलिए कुछ भी बोल। बच्चों को कोई पूछे कि तेरे पापा कितना कमाते, तो कुछ भी बोल देना। तो ये अज्ञान से, और झूठ कहने का अन्य कोई प्रयोजन है? हाँ, राग द्वेष वो सब उसमें ले लेना, क्रोध मान माया लोभ सब कुछ, भय वगैरह सब उसमें आते हैं, कषाय से। तो कोई कषाय से झूठ बोलेगा और अज्ञान से झूठ बोलेगा। अब ये सर्वज्ञ भगवान कैसे है? वीतरागी है, कषाय से रहित है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए वहां झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं है। तो उनकी बात प्रमाण है, तो वक्ता जो बोलने वाला है वो प्रमाण है, तो उसका वचन भी प्रमाण है। तो वक्ता के प्रमाणपना से वचन का प्रमाणपना जाना जाता है। तो ये आगम जो है, सर्वज्ञ कथित आगम है, ये कहने से ही ये बात सिद्ध होती है। इसमें जो बात है वो 100% सही है, सत्य है। और इस प्रमाण के लिए ये हमारे साइंटिस्ट प्रूव करेंगे तो हम मानेंगे। सूरज उगा है कि नहीं उगा? आप कौन सी टॉर्च से देखते हैं? कौन सी आपके पास?
एवरेडी।
अरे वो जो प्रकाश है उसके लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सर्वज्ञ की वाणी को सिद्ध करने के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो इटसेल्फ प्रमाण है। यही बताते हैं, वक्ता के प्रमाणपना से वचन का प्रमाणपना दिखाया है। पुनश्च यथावस्थित अर्थ को, यथा अवस्थित जैसा है वैसा अर्थ को नयति अर्थात प्रतिपादन करता है। पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा प्रतिपादन करता है। ग्रंथ की बात चल रही है। प्रकाशता है वह नेमी कहलाता है। पुनश्च चंद्रयति अर्थात आह्लादित करता है। विकासता है शब्द अर्थ अलंकारों द्वारा श्रोताओं के मनरूपी कमलों को। ये चंद्रमा की ऐसी विशेषता है, ये चंद्रमा के उगने से ये जो चंद्रमुखी जो कमल है वो खिलते हैं। तो यहाँ शब्द यानी ग्रंथों में क्या है? शब्द है, अर्थ है, अलंकार है। अलंकार यानी वो साहित्यिक रचना है, उसके द्वारा श्रोताओं के मनरूपी कमलों को वो आह्लादित करता है, विकसित करता है। कौन कर रहा है? ग्रंथ शास्त्र। वह चंद्र अर्थात जिनेन्द्रवर, वही नेमी वही चंद्र, ऐसा जिनेन्द्रवर नेमी चंद्र प्ररूपण है। प्ररूपण को, शास्त्र को जिनेन्द्रवर नेमी चंद्र कहा। अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ आ रहे, कहीं आत्मा को कहा, कहीं शास्त्र को कहा, कहीं पांचों ही परमेष्ठियों के समूह को कहा, कहीं 24 तीर्थंकरों को कहा, कहीं अकेले नेमिनाथ भगवान को कहा। पुनश्च कैसा है? अकलंकम अर्थात दूर से ही छोड़ दिए हैं। शब्द अर्थ गोचर दोष कलंक जिन्होंने, यानी कोई भी शब्द के या अर्थ के दोष इस ग्रंथ में नहीं होते, शास्त्र रूपी ग्रंथ में। पुनश्च कैसा है? गुणरत्न भूषणोदयम, गुणरत्न जो रत्नत्रय रूप भूषण अर्थात आभूषण उनकी है उदय अर्थात उत्पत्ति व प्राप्ति। हम आदि जीवों के जिनसे, हम आदि जीव यानी आचार्य स्वयं करें, हमें और अन्य जीवों को इन शास्त्र के द्वारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी आभूषणों की प्राप्ति हुई है। ऐसा गुणरत्न भूषण प्ररूपण है। प्ररूपण पर यह बात घटित की है, शास्त्र को ये कहा है, सारे विशेषण से शास्त्र को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा अर्थ निकला। अथवा अन्य अर्थ कहते हैं, ये दसवां नंबर आ गया। चामुंड राय के जीव प्ररूपण शास्त्र के कर्तापने का आश्रय करके मंगल सूत्र व्याख्यान करते हैं। भावार्थ, इस गोमर सार का मूल गाथा बंध ग्रंथकर्ता नेमीचंद्र आचार्य है। मूल गाथा बंध ने, मूल गाथाएं किसने लिखी है? तो नेमीचंद्र आचार्य ने। उनको ही सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, क्योंकि षट खंडागम छह खंड है। जैसे छह खंड को जीतने वाले को हम यहाँ चक्रवर्ती कहते हैं, वैसे ये जो षट खंड है उनका पूरा अद्योपांत अभ्यास और उसमें जो वो प्रवीण है उस कारण उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं। उसकी टीका कर्नाटक देशभाषा द्वारा चामुंडराय ने की है। चामुंडराय ने स्वयं ये टीका की कर्नाटक भाषा में। उन्होंने केवल वो गोमटेश्वर बाहुबली की स्थापना की इतना ही लोगों को मालूम है, परंतु वो कितने अभ्यासु हो गए कि जिन्होंने कर्नाटक भाषा में उसकी टीका स्वयं लिखी। उसके अनुसार केशव नामक ब्रह्मचारी ने संस्कृत टीका की है। सो चामुंडराय की अपेक्षा से इस सूत्र का अर्थ करते हैं। चामुंडराय ने जो इस सूत्र का अर्थ किया है उसको अभी बता रहे हैं। अहम जीवस्य प्ररूपणम वक्ष्यामि, मैं जो हूँ चामुंडराय, सो जीव का प्ररूपण रूप ग्रंथ का टिप्पण उसे कहूंगा। टीका टिप्पणी ने ये जो टिप्पणी वो नहीं, टीका टिप्पणी करते वो बात नहीं, टीका यानी उसका विस्तार से कथन, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। किम कृत्वा, क्या करके, प्रणम्य नमस्कार करके, कम किसे, जिनेन्द्र वर नेमी चंद्रम, जिनेन्द्र है वर अर्थात भर्ता, स्वामी जिसका वह जिनेन्द्र वर। यहाँ जिन अर्थात कर्म निर्जरा संयुक्त जीव, जिन किसको कहे, कर्म निर्जरा से संयुक्त जीवों को यहाँ जिन कहा। उनमें इंद्र अर्थात स्वामी, अरहत, सिद्ध। पुनश्च जिन है इंद्र अर्थात स्वामी जिनका, ऐसे आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसे जिनेन्द्र शब्द से पंच परमेष्ठी आए हैं। उनके आराधन से उपजे हुए जो सम्यक दर्शनादिक गुण, उनसे संयुक्त अपने परम गुरु नेमिचंद्र आचार्य, उनको नमस्कार करके जीव प्ररूपणा कहूंगा। सो कैसा है, सिद्धम अर्थात प्रसिद्ध है, वह वर्तमान काल में प्रवृत्ति रूप समस्त शास्त्रों में निष्पन्न है। पुनश्च कैसा है, शुद्धम अर्थात 25 मल रहित सम्यक जिसके है, वह अतिचार रहित चारित्र जिसके है। ये समझ में आ रहा है कैसा है सिद्धम, ये किसका विशेषण है सिद्धम और शुद्धम? हाँ, आत्मा का। आप क्या कहते हैं? हाँ सरला बे, हाँ मुनि का, बरोबर है, नेमिचंद्र आचार्य का, क्योंकि वे कैसे वर्तमान काल में प्रवृत्ति रूप समस्त शास्त्रों में निष्पन्न है। निष्पन्न है, वो प्रवीण है, एक्सपर्ट है, यानी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है। और शुद्धम यानी 25 मल रहित ऐसा उनके सम्यक्त्व है, और अतिचार रहित चारित्र है। ये सिद्धम और शुद्धम मुनि के लिए लिखा है, आचार्य नेमिचंद्र के लिए। वह देश जाति कुल से शुद्ध है। पुनश्च कैसा है, अकलंकम अर्थात विशुद्ध मन वचन काय संयुक्त है। पुनश्च कैसा है, गुणरत्न भूषणोदयम, गुणरत्न भूषण अर्थात चामुंडराय राजा, उसके है उदय अर्थात ज्ञानादि की वृद्धि जिन से, ऐसे नेमिचंद्र आचार्य। बात है ही नहीं यहाँ पर, ये नेमिचंद्र आचार्य के सिद्धम शुद्धम अकलंकम और गुणरत्न भूषणोदयम ये सारे विशेषण बताए। इस तरह इष्ट विशेष रूप देवताओं को नमस्कार करना है लक्षण जिसका, ऐसे परम मंगल को, ये मंगल करना है तो मंगल में क्या करते हैं, तो अपने इष्ट देवताओं को नमस्कार करते हैं। इष्ट देवता ने परमेष्ठियों को नमस्कार करेंगे, या जो साक्षात गुरु है उनको भी नमस्कार करेंगे। ऐसे परम मंगल को अंगीकार करके इसके अनंतर यानी इसके पश्चात, अनंतर यानी अनंतर, इसके पश्चात अधिकारभूत जीव प्ररूपणा के अधिकारों का निर्देश करते हैं। यानी ये जो इसमें जो अधिकार आएंगे, इसमें जो चैप्टर्स आने वाले हैं, जो विषय आएंगे, जैसे पहला अधिकार, दूसरा अधिकार, इसको अधिकार कहते हैं। लेसन नंबर 1-2 कहेंगे आपके पुस्तक में, हा? चैप्टर, वैसे यहाँ कहेंगे अधिकार। तो अभी जो गाथा है उसमें अधिकारों के नाम बताए हैं।
गुण सॉरी सॉरी, अनंतर का अर्थ ख्याल में आया तेजल? अनंतर इसका अर्थ ऐसा है, अन याने नहीं, अंतर याने डिस्टेंस, यानी जिसमें डिस्टेंस नहीं, यानी इमीडिएटली नेक्स्ट आगे की बात बताएंगे, बीच में कोई रुकावट नहीं,
यानी इसके पश्चात। यहाँ अनंतर का अर्थ होता है इसके पश्चात। अभी अधिकारों की बात करेंगे, जीव प्ररूपणा जो अभी यहाँ शुरू कर रहे हैं उसमें कौन कौन से अधिकार आने वाले हैं उसकी यहाँ नाम निर्देश यहाँ करें। निर्देश यानी कथन, निर्देश करते हैं का अर्थ क्या है, कथन करते हैं, क्योंकि ये शब्द बार बार आने वाले हैं। अभी हम गाथा पढ़ेंगे। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नायम गणाओ वो गोविय कमसो विसंतु परुवणा भनिदा। गुण जीवा पर्याप्तया प्राणा संज्ञाश्च मार्गणाश्च उपयोगोऽपि च क्रमश विंशति प्ररूपणा भनिता। देखो, गुण यानी गुणस्थान, जीवा यानी जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ये तो एक एक लिए ना सभी, मार्गणा होती है 14, तो ये 14 हुए, और लास्ट में उपयोग कितने हुए? हाँ तेजल, कितने हुए? एक गुणस्थान, दूसरा जीव समास, तीसरे पर्याप्ति, चौथे प्राण, पांचवी संज्ञा, और छठे से लेकर 19 तक मार्गणा, 14 होती है,
14 मार्गणा,
14 मार्गणा है,
और
20वें उपयोग। ये प्ररूपणाओं के नाम है। अभी यही इसी बात के हम बार बार कहेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, हमको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि इसको याद करो। क्रम से इन्हीं की चर्चा चलेगी। ये जो जीव की 20 प्ररूपणा है ये उनके नाम है।
देखो गाथा में यहाँ लिखा है जो प्राकृत ने दूसरे लाइन में बीच में विषम, तो विष इतना तो समझती है, और आगे लिखा है विंशतिस्तु, संस्कृत में विंशति यानी
20 प्ररूपणा भणिताहा, मैं कहता हूँ ऐसे नहीं, बताई है किसने, भगवान ने बताई। ठीक है, यहाँ 14 गुणस्थान, अभी वहाँ तो केवल नाम बताए थे, वो कितने हैं उसकी संख्या टीका में बता रहे। 14 गुणस्थान, 98 जीव समास, वो तो अलग अलग होते हैं ना, 98, कहीं 14 बताएंगे, कहीं 28 बताएंगे, तो अलग अलग अपेक्षाओं से उसके भेद होंगे। 6 पर्याप्ति, 10 प्राण, 4 संज्ञा, ये कौन से है क्या है, प्रत्येक अधिकार में यही बात आने वाली है। मार्गणा में 4 गति मार्गणा, 14 मार्गणा में प्रत्येक मार्गणा के भेद और बता रहे। गति इंद्रिय काय वगैरह जो मार्गणा है उसमें गति मार्गणा में 4 गति आती है। 5 इंद्रिय मार्गणा, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय हो इंद्रिय मार्गणा। 6 काय मार्गणा, 5 स्थावर का, 1 त्रस्त का, वो 6 काय मार्गणा। 15 योग मार्गणा, ये अलग अलग जो 15 प्रकार के योग है। 3 वेद मार्गणा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद की बात है यहाँ पर। 4 कषाय मार्गणा, क्रोधमान माया लोग। 8 ज्ञान मार्गणा, 3 मिथ्या ज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान। 7 संयम मार्गणा, जब संयम मार्गणा कहेंगे तो असंयम भी भेद उसमें आएगा, संयम असंयम भी आएगा, और फिर संयम के जो भेद है 5 उसको कहेंगे। 4 दर्शन मार्गणा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। 6 लेशा मार्गणा, इसमें 6 लेशाओं का स्वरूप वर्णन होगा। 2 भव्य मार्गणा, यानी भव्य और अभव्य से 2 प्रकार के जीव होते हैं। 6 सम्यक तो मार्गणा, सम्यक तो 6 प्रकार का नहीं है, सम्यक तो मार्गणा के 6 भेद है। सम्यक तो 3 प्रकार का है, औपशमिक सम्यक, क्षौपशमिक सम्यक और क्षायिक सम्यक। अन्य 3 किसको लिया, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसे 3 भेद, मिथ्या दृष्टि, सासाधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि, पहला दूसरा तीसरे गुण स्थान वाले। 2 संगी मार्गणा में संगी और असंगी चे, दो आहार मार्गणा में आहारक और अनाहारक, उसके अर्थ उसके डिटेल्स हम पढ़ेंगे आगे। दो उपयोग यानी ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, ऐसे ये जीव प्ररूपणा 20 कही है। जीवों के जो भेद है, जीवों के जो विस्तार से कथन है, वो 20 अलग अलग प्रकार से कथन आने वाला है। यहाँ निरुक्ति करते, निरुक्ति का अर्थ ये शब्द कैसा तैयार हुआ उसको निरुक्ति कहेंगे। गुण्यते अर्थात जानते हैं, द्रव्य से द्रव्यांतर जिसके द्वारा, उसे गुण कहते हैं। एक गुण जीवा लिखा है ना, गुण यानी गुणस्थान, तो यानी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में जानने के लिए इसका उपयोग होता है। गुण यानी यहाँ ये पर्यायन की बात है। पुनश्च कर्म उपाधि की अपेक्षा सहित ज्ञान दर्शन उपयोग रूप चैतन्य प्राण द्वारा जीता है वह जीव सम्यक प्रकार आसते अर्थात स्थिति रूप होता है, जिनमें वे जीव समास है। क्या कहते हैं यहाँ, कर्म उपाधि की अपेक्षा सहित लिए, ये जो जीव समास है वो संसारी जीवों में होते हैं। सिद्धों के कोई जीव समास नहीं है, यानी जीवों के जो भेद है वो कर्म उपाधि सहित वाले जीवों में भेद है। यानी कहाँ तक हो गए, 14वें गुणस्थान तक। तो उसमें जीवों के जो भेद है, एकेंद्रीय है, द्विंद्रीय है, तीनद्रीय है, उसमें पर्याप्त है अपर्याप्त है, जो अलग अलग अपेक्षाओं से उसमें भेद करेंगे तो उसको कहेंगे जीव समास। पुनश्च पर्याप्ति का अर्थ कह रहे हैं 60 पृष्ठ पर, परि अर्थात समंतता से, समंतता यानी चौं ओर से, जिसको हम आसमंत कहते हैं मराठी में, तो शब्द है आसमंत,
गुजराती में भी होना चाहिए आसमंत।
हाँ, पर्यावरण शब्द कैसा आया, परि पर्यावरण यानी सभोवताली, ऐसा कहते हैं मराठी में। अभी उसके हिंदी में क्या कहेंगे उसको, हाँ यानी चौं ओर, चौं बाजू से, अपने आसपास से। परि अर्थात समंतता से, आप्ति अर्थात प्राप्ति, सो पर्याप्ति है। शक्ति की निष्पन्नता का होना सो पर्याप्त जानना, यानी शक्ति की पूर्णता होना। शक्ति की शुरुआत तो होती है भव के पहले समय से, परंतु उसकी पूर्णता होने में अंतर्मूर्त लगता है, तो ये पूर्णता होने को पर्याप्त कहेंगे। जो पूर्णता नहीं होते, अपर्याप्त ही रहते, मर जाते, उनको अपर्याप्त कहेंगे। पुनश्च प्राणंति अर्थात जीता है, जीवितव्य रूप व्यवहार को योग्य होता है जीव जिनके द्वारा। जीवितव्य रूप व्यवहार का अर्थ है जिसको हम कहेंगे ये जी रहा है, क्यों, वहां प्राणों की उपस्थिति है। तो फिर उसमें हम 10 प्राण की बात करेंगे, इसका श्वासोश्वास चल रहा है, इसकी नाड़ी चल रही है, हम देखते हैं ना, तो उसको प्राण कहेंगे, वे प्राण है। पुनश्च यहाँ तो बिल्कुल शॉर्ट में अर्थ बता दिया है, जब वो अधिकार आएंगे तो उसके और डिटेल्स बताने वाले हैं। आगम में प्रसिद्ध वांछा, संज्ञा, अभिलाषा, ये एकार्थ है, जिसको कहते हैं तीव्र इच्छा वासना, जिसको कहते हैं इसको ये संज्ञा कहते हैं। इसे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञा है। पुनश्च जिनसे वा जिनमें जीव है, वे मृग्यंत अर्थात अवलोकन किए जाते हैं, वह मार्गणा है। मार्गणा में जीवों की खोज, जीव जहाँ पाए जाते हैं, जैसे गति मार्गणा में हम कहते हैं जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, 4 गतियों में पाए जाते हैं, तो हम उसके 4 भेद करेंगे। हम अपेक्षा बदलेंगे तो हम कहेंगे इंद्रियों की अपेक्षा से, तो जो हमने गति में 4 भेद कहे थे तो उनमें सारे पंचेंद्रिय एक बाजू आ गए, और एकेंद्रिय अलग, द्विंद्रिय अलग, तीनद्रिय अलग, चतुरिंद्रिय अलग, पंचेंद्रिय अलग, तो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा उनके 5 भेद हो गए। इस तरह से मार्गणाएं कही जाती हैं। वहां अवलोकन करने वाला मृगयिता, तो मृग्यंते ने अवलोकन किए जाते हैं। अवलोकन करने वाला कौन है, भव्यों में उत्कृष्ट प्रधान तत्वार श्रद्धावान जीव जानना, क्योंकि एक किसको ये हम अवलोकन करते हैं, कैसे करेंगे? आगम के द्वारा। आगम से हमने इसको जाना है और हमें पता है कि कोई एकेंद्रिय, कोई द्विंद्रिय, कोई तीनद्रिय वगैरह वगैरह, कोई मनुष्य गति वाला है, कोई नरक गति वाला है, कोई देव गति वाला है, कोई तिर्यंच गति वाला है। तो ये अवलोकन करने वाले कौन है? तत्वार्थ के श्रद्धान वाले जीव। जिसको श्रद्धान नहीं है वो तो उसको मानेंगे भी नहीं। पुनश्च अवलोकना मृग्यता के साधन को व अधिकरण को प्राप्त वे गति आदि मार्गना है। यानी ये अवलोकन किसका अवलोकन किया जाता है? तो मार्गना का। पुनश्च मार्गना जो अवलोकन, उसका जो उपाय, सो ज्ञान दर्शन का सामान्य भाव रूप उपयोग है। ये जो 20वीं प्ररूपणा जो है ज्ञान और दर्शन वाली, तो उसको हम ये उपयोग के दो भेद करेंगे। इस तरह इन प्ररूपणाओं के साधारण अर्थ का प्रतिपादन किया, उनके नाम कैसे तैयार हुए ये बात यहाँ बताएंगे। आगे संग्रहने की अपेक्षा से प्ररूपणा के दो प्रकार को मन में रखकर गुणस्थान मार्गना स्थान रूप दो प्ररूपणाओं के नामांतर कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? संग्रह नयन इकट्ठा करके बताना, उनको ग्रुपिंग कर देंगे। हमने कितनी प्ररूपणा देखी अभी अभी? 20 देखी। अभी उनमें दो ही नाम में ये 20 आनी चाहिए। तो हमने एक का नाम बताया यहाँ गुणस्थान और दूसरा नाम बताया मार्गना स्थान। 20 में से एक गुणस्थान को अलग निकालो तो 19 को एक नाम दिया मार्गना स्थान। मार्गना तो है 14 ही, मार्गना स्थान में ये सारे आ जाएंगे। देखो यहाँ विशेषार्थ में लिखा है, ये जो विशेषार्थ है ना, ये तो मैंने बाद में लिखा, स्पेशली लिखा, ये मूल पुस्तक में नहीं है। हिंदी अनुवाद करते समय इसको समझने के लिए या पढ़ने वालों के समझ में आ जाए, कभी कभी ये वाक्य रचना अटपटी लगती है ना, ख्याल में नहीं आता क्या कहना चाहते, इसलिए एडिशनली डाला है। इन 20 प्ररूपणाओं को दो भेदों में विभाजित करने पर गुणस्थान और मार्गणास्थान, इस तरह दो प्ररूपणाएं होती है, उन्हीं के पर्यायवाची नाम कहते हैं। अभी दो भेद किए ना, गुणस्थान और मार्गणास्थान, इसके लिए और कोई नाम है तो बताएंगे। संक्षेप और ओघ और संक्षेप ये गोड़ी नहीं है, ओघ और आदेश, संक्षेप और विस्तार, वही बात बताएंगे।
पर्यायवाची यानी क्या, नहीं समझे?
पर्यायवाची यानी उसी समान अर्थी, पर्यायवाची नाम यानी समान अर्थी, एकार्थवाची नाम यानी उसी मीनिंग वाला कोई अन्य नाम।
जैसा हम टिकट निकालने को जाते हैं रेलवे में, आज की बात नहीं, तो भाई ये पूछते हैं कि भाई ये फला फला गाड़ी हमको दिल्ली जाने का, कौन सी गाड़ी है? तो बोलते ये तो फुल हो गई, दूसरा कोई पर्याय है यानी इधर अल्टरनेटिव कोई है आपके पास? तो ये पर्याय वाची का अर्थ क्या है? इसी एक ही शब्द के लिए दूसरा शब्द वापरना,
यानी सेम मीनिंग वाला दूसरा शब्द। अभी हम गाथा में पढ़ेंगे पहले। संखे ओ घोत्य गुण सन्नासा च मोह जोग भवा विथारा देशोत्य मगण सन्नाकम भवा संक्षेप ओघ इति च गुण संज्ञा सा च मोह योग भवा विस्तार आदेश इति च मार्गण संज्ञा स्वकर्म भवा। इसकी टीका देखते हैं। संक्षेप ऐसी ओघ गुणस्थान की संज्ञा अनादि निधन ऋषि प्रणीत मार्ग में रूढ़ है, प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं? गुणस्थान को ही संक्षेप भी कहेंगे और उसका दूसरा एक नाम है ओघ, नहीं ना, ओघ से और आदेश से ऐसा कहते हैं। तो ओघ यानी गुणस्थान की बात,
यानी गुणस्थान को ही ओघ ऐसा कहते हैं, गुणस्थान को ही संक्षेप ऐसा कहते हैं।
तो गुणस्थान का ही संक्षेप वहाँ ओग ऐसा भी नाम है, लिखा ना आगे।
ये कैसा है? ये नाम अनादि निधन है, अनादि से चले। कौन कहता है ऐसा? ऋषि प्रणीत यानी मुनियों से बताया गया जो मार्ग है उसमें यह रूढ़ है यानी वह प्रचलित है, प्रसिद्ध है, अननोन नहीं है। आप नहीं जानते तो क्या करें? बॉम्बे आगरा रोड जानती है ना, कितने बार गई है रोड से? जानते हैं बस, ऐसा ये प्रचलित है, रूढ़ है, इंग्लिश रूढ़ नहीं है। आगे
पुनश्च वह संज्ञा, संज्ञा ने नाम, पहले ऊपर देखा ना अनादि निधन ऋषि प्रणीत, ऋषियों के द्वारा बताए हुए। अब कहते वह संज्ञा मोह योग भवा, अर्थात दर्शन चारित्र मोह, मोह यानी मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह, और योग यानी मनोयोग वचन योग और काय योग। तो ये जो संज्ञा है वह दर्शन चारित्र मोह और मन वचन काय योग उनसे उपजी है। यह संज्ञा के धारक गुणस्थान को मोह योग से उत्पन्न पना है। आगे चलकर गुणस्थान की परिभाषा हम देखेंगे तो उसमें मोह और योग के निमित्त से ऐसा कहेंगे, यानी गुणस्थान क्यों उपजते हैं तो मोह के निमित्त से और योग के निमित्त से, उसी के द्वारा उसके इतने भेद पड़ते हैं। गुणस्थान मोह और योग से उत्पन्न हुए है तो इसलिए नाम भी मोह और योग से उत्पन्न हुए ऐसा कहा, ये बात बताना चाहते हैं। यहाँ संज्ञा के धारक गुणस्थान को, ये नाम किसके है तो गुणस्थान के है, तो गुणस्थान क्यों उपजा है? मोह और योग के कारण। गुणस्थान को मोह योग से उत्पन्न पना है इसलिए उसकी संज्ञा के भी मोह योग से उपजना उपचार से कहा। यथार्थ में मोह और योग से गुणस्थानों की उत्पत्ति होती है, यानी दर्शन मोह के अपेक्षा से पहले चार गुणस्थान, चारित्र मोह की अपेक्षा से आगे के गुणस्थान, फिर सहयोगी अयोगी वगैरह वगैरह, ये जो भेद पड़ते हैं वो गुणस्थानों के लिए मोहर योग का निमित्त पना है, परंतु यहाँ उनके जो अन्य नाम है उसको भी मोहर योग से उपजे ऐसा कह दिया। पुनश्च सूत्र में चकार कहा है, सा च लिखा ना ऊपर, तो च में और एक नाम गर्भित है, इसलिए सामान्य ऐसी भी गुणस्थान की संज्ञा है ऐसे जानना, यानी गुणस्थान के लिए अभी तीन नाम और आ गए, संक्षेप, ओग और सामान्य। वो च शब्द से गाथा में बताया है। पुनश्च उसी प्रकार ये गुणस्थान के बताया, अभी मार्गणास्थान के नाम बता रहे, ऊपर संक्षेप कहा था उसके अगेंस्ट यहाँ विस्तार कहा, ऊपर ओग कहा वहां आदेश कहा, तो विस्तार आदेश ऐसी मार्गणास्थान की संज्ञा है। मार्गणा का विस्तार आदेश ऐसा नाम है, सो यह संज्ञा अपनी अपनी मार्गणा के नाम की प्रतीति के व्यवहार को कारण जो कर्म उसके उदय से होती है। वहां तो कहा मोहर योग से उत्पन्न होती है, क्यों? गुणस्थान मोहर योग से उत्पन्न होते हैं। अब मार्गणा क्यों उत्पन्न होती है? अपने अपने कर्म के कारण, जैसे चार गति मार्गणा है तो नरक गति नाम कर्म के उदय से वगैरह वगैरह, तो एक्चुअली मार्गणा कर्म के उदय से होती है, परंतु यहाँ मार्गणा के नाम भी कर्म के उदय से होते हैं ऐसा उपचार कर दिया। जैसे गुणस्थान के नामों पर भी उपचार किया वैसे यहाँ पर भी, यहाँ भी पूर्ववत संज्ञा के कर्म से उपजने का उपचार जानना। नाम कोई कर्म के निमित्त से नहीं उपजते, परंतु मार्गणा कर्म के निमित्त से उत्पन्न होती है इसलिए उसका नाम भी कर्म के निमित्त से हुआ ऐसा कहेंगे। निश्चय से यानी यथार्थ में इन रियालिटी संज्ञा तो शब्द जनित ही है, संज्ञा यानी जो नाम होते हैं वो शब्दों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई कर्म का लेना देना है ही नहीं है, फिर भी उपचार से वहां कहने में आता है। पुनश्च चकार से, जैसे वहां चकार शब्द आया था और च से सामान्य ऐसे हमने नाम देखा था, वैसे यहाँ चकार से विशेष ऐसी भी मार्गणा स्थान की संज्ञा गाथा में बिना कहे भी जानने, च लिखा है तो यहाँ, क्योंकि ये तो परंपरा रूढ़ी से बात चली आई है, इसलिए वो च में से ये अर्थ निकाल कर हमें बताया। अब यहाँ फिर दोबारा विशेषार्थ लिखते हैं। इसी टीका का इन शॉर्ट, गुणस्थान के अन्य नाम संक्षेप, ओघ और सामान्य। मार्गणा के अन्य नाम विस्तार, आदेश और विशेष। ये शॉर्ट में बता दिया तो ये हमें याद रह जाएगा। आगे प्ररूपणा के दो प्रकार पने में अवशेष प्ररूपणाओं का अंतर्भूतपना दिखाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? दो ही प्रकार की प्ररूपणा की हमने अभी, कौन सी? एक गुणस्थान और एक मार्गणा स्थान, और टोटल प्ररूपणा तो 20 है, तो किसमें क्या गर्भित करना ये बात बताएंगे। आदेश संलीना जीवा पज्जति पाण सन्नाओ वो गोविय भेदे विसंतु परुवणा भणिदा। आदेशे संलीना जीवा पर्याप्ति प्राण संज्ञाश्च उपयोगोऽपि च भेदे विंशस्तितु प्ररूपणा भणिता। मार्गणा स्थान प्ररूपणा में, मार्गणा स्थान लिखा है ना, जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा उपयोग, ये पांच प्ररूपणा संलीना अर्थात गर्भित है, किसी प्रकार से उन मार्गणा भेदों में अंतर्भूत है। मार्गणा के भेदों में ही ये अंतर्भूत है। जैसे मार्गणा हम एक इंद्रियादि मार्गणा कहते हैं, तो ये जीव समास भी उसमें गर्भित होते हैं। वैसा होने पर गुणस्थान प्ररूपण और मार्गणा स्थान प्ररूपण इस तरह संग्रह नहीं की अपेक्षा, संग्रह ने उसको इकट्ठा करना, एक बड़ा ग्रुप बनाना। प्ररूपणा दो ही निरूपित होती है, मुख्य बने दो और फिर डिटेल में देखना है तो 20। आगे किस मार्गणा में कौन सी प्ररूपणा गर्भित है वह तीन गाथाओं द्वारा कहते हैं। बता तो दिया 14 मार्गणा में ये अन्य पांच भी प्ररूपणा गर्भित है, परंतु वो कैसे, कहां कौन सी गर्भित है वो यहां बता देंगे। इंद्रिय काये लीना जीवा पज्जति आण भासमणो जोगे काओ नाणे अखा गदिमगणे आओ। इंद्रिय काये लीना जीवा पर्याप्त्यान भाषा मनांसी योगे काय ज्ञाने अक्षाणि गति मार्गणायामायु। इंद्रिय मार्गणा में पुनश्च काय मार्गणा में, इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि पंचेंद्रिय तक उसको इंद्रिय मार्गणा कहेंगे। काय मार्गणा में पांच स्थावर काय और एक त्रस काय, उसको काय मार्गणा कहेंगे। उसमें जीव समास और पर्याप्ति और श्वासोश्वास भाषा मन बल प्राण ये अंतर्भूत है। उसको हमने जो अन्य प्ररूपणा देखी थी वे प्ररूपणा इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में अंतर्भूत है, गर्भित है। कैसे है वह कहते हैं। जीव समास में क्या है, एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर वे द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि पंचेंद्रिय तक और हरेक के पर्याप्त अपर्याप्त, ये जीव समास होते हैं। वही एक इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा उन्हीं को हम एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय कहेंगे, काय मार्गणा में उन्हीं को पांच स्थावर का एक त्रस काय कहेंगे, यही बात बताते हैं। जीव समास और पर्याप्ति, इनका इंद्रिय तथा काय सहित तादात्म्य से किया हुआ एकत्व होता है। क्या कहते हैं? जीव समास में क्या है, जैसे इंद्रिय मार्गणा में इंद्रिय की अपेक्षा अलग अलग भेद किए और काय मार्गणा में काय की अपेक्षा, कौन से, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, अभी उनको अलग अलग नहीं बताते हुए दोनों को इकट्ठा कर दो। तो इंद्रिय और काय सहित तादात्म्य से किया हुआ एकत्व, उनके द्वारा जीव समास होते हैं। पर्याप्ति में भी ऐसा ही होता है। जीव समास और पर्याप्ति ये इंद्रिय काय रूप ही है, यानी वही कथन उसमें आएगा, यही कथन इसमें आएगा, उसका नाम जीव समास रखेंगे, पर्याप्ति रखेंगे और वहां इंद्रिय और काय मार्गणा कहेंगे। पुनश्च सामान्य विशेष द्वारा किया हुआ एकत्व होता है उसका अर्थ बताते हैं। जीव समास, पर्याप्ति और इंद्रिय, काय में कहीं सामान्य का ग्रहण है, कहीं विशेष का ग्रहण है। क्या कहते हैं? जीव समास और पर्याप्ति एक बाजू, और इंद्रिय और काय, इनमें कहीं सामान्य का ग्रहण है, कहीं विशेष का ग्रहण है। पुनश्च पर्याप्तियों का धर्म धर्मी किया हुआ एकत्व होता है, द्वारा किया हुआ एकत्व होता है। ये धर्म धर्मी क्या होता है? धर्म और उसको धारण करने वाला वो धर्मी। ऐसे पर्याप्ति वो उसका धर्म है, वो उसका वैशिष्ट्य है, उसकी विशेषता है। और इंद्रिय का है वो धर्मी है। पर्याप्ति किसे होती है? हम कहेंगे एक इंद्रियों की इतनी पर्याप्ति होती है, चौ इंद्रिय की इतनी होती है, पंच इंद्रियों की इतनी होती है। पर्याप्ति यानी शक्तियां, उसको धर्म कहा। और उनका धारक कौन है? वो इंद्रिय काय वाले जीव। इसलिए
यहाँ पर काय में कहीं सामान्य का ग्रहण और विशेष का ग्रहण जो बताया, उसका जरा अर्थ बताना।
हाँ देखो, यहाँ जीव समास और पर्याप्ति एक बाजू लिया और इंद्रिय और काय में दूसरी बाजू लिया, तो कहीं सामान्य का ग्रहण, ग्रहण ने उसका विशेष निरूपण कहो, उसका ज्ञान होता है कहो, और कहीं विशेष का ग्रहण होता है ऐसा कह दिया।
यानी यहाँ
जैसे हाँ,
गुणस्थान और मार्गनस्थान में सामान्य और विशेष की
नहीं,
बात
नहीं, वो बात नहीं है,
वो लेनी है या इन जनरल ना, 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 और कोई विशेष।
देखो, गुणस्थानों को सामान्य और मार्गनस्थानों को विशेष कहते हैं, वो बात यहाँ नहीं है।
वही चाहते हैं।
जैसे कहीं सामान्य और कहीं विशेष का अर्थ क्या है? जीव समास में कहीं हम 14 वेद करेंगे, कहीं ज्यादा भी कहेंगे, कहीं 28 करेंगे, कहीं 406 भी कहेंगे, तो हमने विशेष विस्तार से बात की। और बाकी इंद्रिय में 5 इंद्रिय जो है, 5 ही भेद है, सामान्य से 5 भेद किए, और उसी के विशेष करेंगे तो बहुत सारे भेद करेंगे। एक इंद्रियों में भी सूक्ष्म बाधर करेंगे, उसमें भी पर्याप्त पर्याप्त करेंगे, फिर काय की अपेक्षा भेद करेंगे, तो एक तो एक इंद्रिय और काय की अपेक्षा उसके 5 भेद हो गए, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। इस तरह से कहीं सामान्य से और कहीं विशेष विस्तार से वर्णन है। जब उसके प्रकरण आएंगे तो उसके विस्तार में क्या क्या होता है वो बात ख्याल में आएगी अपने। कौन से? हाँ, क्योंकि वो उसमें गर्भित है। देखो, इंद्रिय काय ये मार्गणा है, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा, 14 मार्गणा तो हमें मालूम है। और 14 मार्गणाओं के अलावा अन्य जो प्ररूपणा है कौन कौन सी? जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, उनको मार्गणाओं में गर्भित करके दिखाना है। तो जीव समास और पर्याप्ति ये जो अन्य प्ररूपणाएं हैं वो इंद्रिय मार्गणा में और काय मार्गणा में गर्भित होती है, ये बताना है। क्योंकि जीव समासों में और डिटेल में बात करेंगे, परंतु वो सारी इसमें आ ही जाती है सामान्य में। तो सामान्य में तो विशेष गर्भित होता ही है, परंतु वहां विशेष विस्तार अलग से बताया है, इसलिए प्ररूपणा करते समय उसको अलग बताया। परंतु मार्गणा में वही बात आ जाती है, गर्भित है, इतना ही बताना है। तीसरी लाइन के अंत में, इसलिए समय हो गया अपना, जीव समास और पर्याप्ति इंद्रिय काय मार्गणा में गर्भित जानने। आगे की बात हम कल पढ़ेंगे, यहीं रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हो। अश्विन भाई।